नमस्कार भारत, तारीख 30 जुलाई दिन शनिवार, आपके साथ मैं अशोक कुमार। तुर्की और अमेरिका में तल्खी बढ़ी, राष्ट्रपति अर्दोगन ने अमेरिकी जनरल पर लगाया षड्यंत्रकारियों का पक्ष लेने का आरोप।
इसके भी थाने से ने यजिक कि अमेरिका दा।
घाटी में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयान पर विवाद बढ़ा और ढाका से होगी खास रिपोर्ट उन लोगों के बारे में जो गए तो थे यूपी और बिहार से लेकिन कहलाते हैं अटके हुए पाकिस्तानी।
हम लोग चाहते जो इंडिया जाए वो भी नहीं सकते, पाकिस्तान जाए, हम लोग का भाई बिरादर पाकिस्तान में, वो भी जाने का हम लोग का खेमाता नहीं है। जो पासपोर्ट बनोगी या बनोगी, बिहारी को कोई पासपोर्ट नहीं है, वीसा नहीं है।
खबरें होंगी खेल की भी और अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन सबसे पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोगन ने ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का ऐलान किया है जिन पर उनके अपमान का आरोप है। बीते 2 साल के दौरान ऐसे करीब 2000 मामलों में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है। अर्दोगन ने कहा कि वो तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के दौरान दिखाई गई एकजुटता से प्रेरित हैं। हालांकि तख्ता पलट की कोशिश नाकाम होने के बाद तुर्की में जारी कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले देशों की राष्ट्रपति ने आलोचना की। उन्होंने अमरीकी जनरल जोसेफ वोटल पर साजिश रचने वालों का पक्ष लेने का आरोप लगाया। जनरल वोटल ने इन आरोपों को गलत बताया है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा पर न्यायिक कार्य में बाधा डालने का मुकदमा चलाया जाएगा। सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास में हुए भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ जांच की जा रही है। मई में ब्राजील के अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि लूला की भ्रष्टाचार में अहम भूमिका रही है। वो खुद पर लगाए गए आरोपों से इनकार करते रहे हैं। अमरीका के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि फ्लोरिडा राज्य में 4 लोग स्थानीय मच्छरों के जरिए जीका वायरस की चपेट में आए हैं। इसके पहले जीका से जुड़े मामले लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों की यात्रा करने वालों में सामने आए थे। जीका वायरस को नवजात बच्चों के दिमाग में विकार के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि फ्लोरिडा अब भी यात्रा के लिए सुरक्षित है, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने गर्भवती महिलाओं को सलाह दी है कि वो इस राज्य की गैर जरूरी यात्राओं को स्थगित कर दें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फाउची के मुताबिक मच्छरों को नियंत्रित करना वायरस पर काबू करने का अहम तरीका है। उन्होंने कहा,
Very aggressive mosquito abatement will prevent it, we hope, and I
मच्छरों पर कड़ाई से रोक लगाने से इस पर काबू होगा। मैं मानता हूं कि हम इसका फैलाव रोक लेंगे। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये आगे नहीं फैले। इसका फैलाव मच्छरों के जरिए होता है, इसलिए हम मच्छरों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। ये थे डॉक्टर एंथनी फाउची के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफ्रीकी देश बुरुंडी में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बल की तैनाती को मंजूरी दे दी है। ये पुलिस बल बुरुंडी में 1 साल से जारी हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर रोक लगाने की कोशिश करेगा। परिषद ने फ्रांस की ओर से पेश प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें 228 पुलिस अधिकारियों की 1 साल की तैनाती की बात कही गई है। बुरुंडी की सरकार ने कहा था कि वो 50 से ज़्यादा अधिकारियों की तैनाती को मंजूर नहीं करेगी। यूरोपीय बैंकिंग अथॉरिटी ने यूरोप के 50 से ज़्यादा बैंकों की स्थिति को लेकर की गई जांच रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एक और वित्तीय संगठन के वक्त ये बैंक किस स्थिति में होंगे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी की हिंदी सेवा से कार्यक्रम नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव, और आपके साथ मैं अशोक कुमार। तुर्की में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के 15 दिन बाद भी विश्व मीडिया में लगातार ये मुद्दा छाया हुआ है। खासकर अमेरिका और यूरोपीय देशों से तुर्की की बढ़ती तल्खी लगातार सुर्खियों में है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोगन ने एक आला अमेरिकी सैन्य जनरल पर तख्ता पलट करने वालों का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। कल वो अंकारा में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और उनके निशाने पर अमेरिका और यूरोपीय देशों की सरकारें थीं। अर्दोगन ने कहा कि जिन लोगों को तुर्की के लोकतंत्र से ज्यादा चिंता तख्ता पलट की साजिश रचने वालों की है, वो कभी तुर्की के दोस्त नहीं हो सकते हैं। सुनिए बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार वात्सल्य राय से।
तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोगन ने अंकारा में हुए एक समारोह को अमरीका और यूरोपीय देशों को चेतावनी देने का मंच बना लिया। उन्होंने अमरीका के एक आला जनरल के बयानों को आधार बनाकर कहा कि वो साजिश रचने वालों का पक्ष ले रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल जोसेफ वोटल ने गुरुवार को कहा था कि सेना के कुछ अधिकारियों को जेल भेजने से तुर्की और अमरीका की सैन्य साझेदारी को नुकसान हो सकता है। इसके जवाब में अर्दोआन ने कहा,
मिल्लतिम şu anda bu tezgahın içinde olanları da biliyor.
अब उनमें से एक जो दुर्भाग्य से अमरीका में जनरल या एडमिरल के पद पर है, उनका कहना है कि मैंने देखा और सुना है कि ऊपरी कमान में मौजूद जिन लोगों के हम संपर्क में हैं, वो हिरासत में लिए लोगों में शामिल हैं। वो ये कहते हैं, एक शख्स को कुछ शर्म आनी चाहिए। आप ऐसी चीजों के बारे में फैसला लेने वाले कौन होते हैं? आप कौन हैं? सबसे पहले आप अपनी हैसियत को पहचानिए। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति के शब्द। अर्दोआन ने यह भी कहा कि अमरीका ने उस शख्स को पनाह दी हुई है जिसे तुर्की में तख्ता पलट की साजिश के पीछे माना जाता है। उनका इशारा धार्मिक नेता फतेहउल्लाह गुलेन की तरफ था, हालांकि गुलेन तमाम आरोपों से इनकार करते रहे हैं। अर्दोआन ने कहा,
अंकारा ve İstanbul'da burayı iyi dinleyin.
मेरा देश अच्छी तरह से जानता है कि इस सबके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। आप ऐसे बयानों के जरिए खुद के बारे में खुलासा कर रहे हैं। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति के शब्द। उधर तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दरम ने बताया कि उन्होंने तख्ता पलट की साजिश रचने वालों के इस्तेमाल किए सभी सैन्य ठिकानों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा, अंकारा और इस्तांबुल में हम उन सभी बैरकों को बंद कर देंगे जहां से टैंक और हेलीकॉप्टर भेजे गए थे। ये थे तुर्की के प्रधानमंत्री के शब्द। वहीं अमरीकी जनरल वोटल ने कहा कि उनके तख्ता पलट में शामिल होने की कोई भी रिपोर्ट दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि तुर्की बीते कई साल से अमरीका का अहम सहयोगी है और वो स्वयंभू इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग में तुर्की अमरीका की साझेदारी जारी रहने की उम्मीद करते हैं। तुर्की में तख्ता पलट की कोशिश नाकाम होने के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र के 66,000 से ज्यादा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। 50,000 से ज्यादा पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं। 142 मीडिया संस्थानों को बंद करा दिया गया है और कई पत्रकारों को भी हिरासत में लिया गया है। हालांकि राष्ट्रपति का कहना है कि सद्भावना के तहत वो उन तमाम लोगों के खिलाफ मामले वापस ले रहे हैं जिन पर उनके अपमान करने का आरोप है। बीते 2 साल में ऐसे करीब 2,000 मामले दर्ज हुए हैं।
बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार आपको सुना रहे थे वात्सल्य राय।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब रुख करते हैं भारत का। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के इस बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है कि 8 जुलाई को चरमपंथी कमांडर बुरहान वानी का मारा जाना एक इत्तेफाक ही था, क्योंकि छापे की कार्रवाई के दौरान वहां बुरहान वानी के होने की जानकारी न तो सुरक्षा बलों को थी और न ही खुद मुख्यमंत्री को। विपक्षी नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां महबूबा के इस दावे पर सवाल उठा रही है, वहीं ऐसी भी खबरें हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री भी उनके इस बयान से खुश नहीं हैं। और इसी पृष्ठभूमि में कल केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने टेलीफोन पर महबूबा मुफ्ती से बात की। हमारी साथी सुशीला सिंह ने फोन लगाया श्रीनगर और बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से पूछा कि राजनाथ सिंह और महबूबा मुफ्ती के बीच क्या बातें हुई।
चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो है यहाँ महबूबा मुफ्ती का, तो उन्होंने तो ये स्पष्ट नहीं किया है कि बातें क्या हुई हैं, स्पेसिफिक क्या डायलॉग हुआ है। तो जब हमने उनसे पूछा कि बात क्या हुई, क्योंकि ये दूसरा मौका है कि टेलीफोन पर गृह मंत्री ने बात की है मुख्यमंत्री के साथ, तो उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने पूरा आश्वासन दिया कि जिस तरह से भी हो सके, चाहे आपको सुरक्षा बलों की ज्यादा जरूरत हो या किसी तरह का कोई आपको कदम उठाना हो, तो उसमें आपको केंद्र सरकार की पूरी सहायता साथ है। लेकिन बुरहान वानी के ऑपरेशन के बारे में जो परसों मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि उनको सेना और पुलिस ने जो सूचना दी थी उसके मुताबिक सिर्फ ये उनको मालूम था कि 3 चरमपंथी है दक्षिणी कश्मीर के कोकरनाग इलाके में फंसे हुए, उनके विरुद्ध ऑपरेशन जारी है, लेकिन ये मालूम नहीं था कि उन 3 में से एक बुरहान है। तो उन्होंने इस तरह से ये बताया कि एक संयम की बात है कि बुरहान वानी उस ऑपरेशन में मारा गया, और अगर मालूम होता पुलिस को या इंटेलिजेंस جس کو یا انہیں کہ برہان وانی واقعی اس آپریشن میں موجود ہے تو یہ ان کو ایک دوسرا چانس دیا جاتا.
جی راجیہ کی مکھیہ منتری کا کہنا تھا کہ اگر پتا ہوتا تو برہان وانی کو دوسرا موقع دیا جاتا, لیکن اس بیان کے بعد سے ہی گھاٹی میں ہی نہیں بلکہ کیندر تک جو ہے راجنیتی ایک دم گرم ہو گئی ہے. کس طرح کی بیان بازی آ رہی ہے؟
یہ ان کا بیان جو ہے یہ بالکل کانٹرڈکٹ کرتا ہے جو بھارت سرکار کا بیان ہے. بھارت سرکار نے تو ان سرکشا بلوں کو جو ہے شاباشی بھی دی, بلکہ گرہ منترالے نے ہی اس کو اناؤنس بھی کیا اور کہا کہ یہ بہت ہی بڑی سفلتا ہے یہاں کے سرکشا بلوں کے لیے اور پولیس کے لیے خاص طور سے, کیونکہ برہان وانی جو ہے سوشل میڈیا پہ کافی سمبل بنے ہوئے تھے چرم پنتھ کے. تو اس طرح سے یہ کانٹرڈکشن ہے, اسی لیے جو کل فون پہ بات ہوئی ہے کو لے کر کافی اٹکلیں لگائی جاتی ہیں کہ کہیں گرہ منترالے جو ہے انہوں نے اس میں ایکسیپشن تو نہیں لیا, ناراضگی تو نہیں دکھائی. لیکن دوسری طرف جو اپوزیشن کے نیتا ہیں عمر عبداللہ اور پورو مکھ منتری بھی ہیں, انہوں نے محبوبہ مفتی کا یہ دعویٰ رد کیا ہے اور کہا ہے کہ پہلے 3 دنوں میں ہی پولیس نے یہ بتایا تھا کہ 2 مہینے سے برہان وانی کا پیچھا چل رہا تھا, انٹیلیجنس کو انپوٹس تھے اور الیکشن کا ویٹ ہو رہا تھا اور بالکل مکھیہ منتری کو آن بورڈ لیا گیا اور سبھی جو ہے دلی سے سری نگر تک جتنے بھی کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں ان کو آن بورڈ لے کر برہان وانی کے ورودھ آپریشن کیا گیا. تو اس طرح سے یہ گتھی سلجھ نہیں پا رہی ہے کہ مطلب معاملہ ہوا کیا ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ برہان وانی کے آپریشن سے خود کو ڈسٹینس کر کے وہ اپنے اوپر ہو رہے پولیٹیکل ڈیمیج کو بچا پائیں گے.
جی سرکار کی اپیل کے باوجود الگاوادیوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنا ورودھ جاری رکھیں گے, تو اب اس بارے میں کیا جانکاری ہے آپ کے پاس؟
کل چونکہ جمعہ تھا اور جمعہ کے دن الگاوادیوں نے مارچ کرنے کی اپیل کی تھی, جو 600 سال پرانی مسجد ہے, جامع مسجد کہتے ہیں سری نگر میں, تو وہاں سب کو چلنے کے لیے کہا تھا لیکن پرشاسن نے بالکل زبردست کرفیو کیا. حالانکہ 2 دن پہلے جو ہے سری نگر اور کچھ انیہ کم سمویدنشیل جو ہوتے ہیں چھیتر ان میں کرفیو اٹھا لیا تھا, لیکن کل ہم نے دیکھا کہ پوری گھاٹی میں کرفیو تھا اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ غصہ جو ہے وہ سڑکوں پر پھوٹ پڑا اور اتنے زیادہ کلیشز ہو گئے کہ 100 سے زیادہ لوگ جو ہے کلیشز میں ان مڑبیڑوں میں گھائل ہو گئے.
یہ تھے شری نگر سے بی بی سی سنواداتا ریاض مسرور اور ان سے بات کر رہی تھی ہماری ساتھی سوشیلا سنگھ. اور دوسری طرف اتر پردیش میں 3 دن کی بس یاترا کے بعد کانگریس نے کل اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ پارٹی اپادھیکش راہل گاندھی کی سیدھی ملاقات کا کارکرم رکھا. پارٹی نے چناؤ سے سمبندھت رننیتی, کارکرتاؤں کی شکایتیں اور ان کے سجھاؤ بھی مانگے تھے, جن کا جواب سیدھے راہل گاندھی نے دیا. اس سیدھے سنواد کے ذریعے کانگریس نے اپنی طاقت دکھانے کی بھی کوشش کی ہے. ایک رپورٹ کے ساتھ لکھنؤ سے سمیر آتمج مشر.
یوں تو کانگریس پارٹی نے اتر پردیش ودھان سبھا چناؤ کے لیے اپنے پرچار ابھیان کی شروعات گت دنوں بس یاترا کے ساتھ ہی کر دی تھی, لیکن کل لکھنؤ میں پارٹی کے بڑے نیتاؤں اور کارکرتاؤں کے ساتھ سیدھا سنواد ہوا. اس کارکرم میں پردیش بھر سے کانگریس کارکرتا لکھنؤ کے رمابائی امبیڈکر میدان میں جمع ہوئے تھے اور ان سے راہل گاندھی نے نئے انداز میں بات چیت کی. قریب 200 میٹر لمبے ریمپ پر ٹہل کر راہل گاندھی نے کارکرتاؤں کے سوالوں کے جواب دیے. سوال بڑی سنکھیا میں آئے تھے, لیکن ان میں سے چنندہ کا ہی جواب وہ دے سکے. کانگریس پروکتا ستیہ دیو ترپاٹھی نے بتایا,
سوال تو لوگوں نے سلپ ڈالی تھی بہت ساری, لیکن اس میں سلیکٹ کر کے ان کا پہلے آ گیا انہیں کا جواب دے دیا. کیونکہ کارکرتا یہی ساری چیزیں گٹھ بندھن, امیدوار جلدی گھوشت کرنا, ان ساری چیزوں پہ کارکرتا جو بحث آپس میں کرتا ہے وہی سارے سوال پوچھے. کارکرتاؤں نے پوچھے, انہیں کا بیسیکلی سنواد تھا, کوئی ریلی نہیں تھی, کوئی جن سبھا نہیں تھی, کوئی بھاشن نہیں تھا. راہل جی نے ہر پرشن کا جواب دیا جو انہوں نے دینا تھا.
کانگریس نیتاؤں کا دعویٰ ہے کہ اس کارکرم میں قریب 50,000 کارکرتا پہنچے تھے جو کانگریس کے بوتھ لیول سے لے کر پرانے کانگریسی تھے. زیادہ تر کارکرتا راہل گاندھی کے اس نئے اوتار سے خوش تھے, خاص کر یوا کارکرتا. ان کا جوش دیکھنے لائق تھا اور اس سمے ہوئی بھیشن بارش بھی ان کا اتساہ ڈگا نہیں پائی. راہل گاندھی سے بات کر کے باہر نکلے کچھ کارکرتاؤں سے میں نے ان کے انوبھو پوچھے.
ہم لوگ تو یہی وشواس لے کے آئے تھے کہ ہماری بات سنی جائے گی اور سنی گئی. مین ادیش تھا کہ سنگھن کس طرح مضبوط ہو, اسی کے بارے میں وچار ومرش ہوا.
جب ہم لوگ نیچے استر تک جائیں گے, محنت کریں گے, چونکہ سنگھرش ہی جیون ہے, اگر ہم سنگھرش کریں گے سارے لوگ مل جل کر کے, تو ضرور کانگریس ایک بار رنگ لائے گی اور کانگریس مطلب سرکار بنا لے گی. ایسا کچھ نہیں ہے, مطلب کوئی ناممکن نہیں ہے.
کسان جی جو لائے گئے سنگھن کو مضبوط کرنے کے لیے لائے گئے ہیں,
وہ سنگھن کو مضبوط کر رہے ہیں اور کانگریس کو انرجی دے رہے ہیں.
اس بیچ ایسی خبریں بھی آ رہی تھیں کہ یو پی کے لیے بنی کانگریس کی نئی ٹیم سے تمام نیتا اور کارکرتا ناراض ہیں. लेकिन सत्यदेव त्रिपाठी इस बात से इंकार करते हैं।
किसी तरह की नाराजगी का प्रश्न ही नहीं उठता।
बहरहाल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नई रणनीति और हर गतिविधि पर राजनीतिक दलों के अलावा राजनीतिक पंडितों की भी नजर है। ये सब वोट में कितना तब्दील होगा ये देखना दिलचस्प होगा। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
BBC इंडिया बोल। क्या मीडिया का राष्ट्रवादी होना जरूरी है या निष्पक्ष? टेलीविजन के दो पत्रकारों के बीच इस सवाल पर पिछले दिनों खुलेआम भिड़ंत हो गई। एक ने कहा पाकिस्तान परस्त पत्रकारों को सबक सिखाया जाना चाहिए, तो दूसरे ने इसे सरकार की चमचागिरी करार दिया। मगर क्या आप मानते हैं कि मीडिया को राष्ट्रवादी होना चाहिए? इस शनिवार 30 जुलाई को इंडिया बोल में इसी विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
तो कार्यक्रम में आज शाम जरूर हिस्सा लीजिएगा। और अब एक खास रिपोर्ट। हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव इन दिनों बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हैं और अपनी रिपोर्टिंग के दौरान वो पहुंचे जिनीवा कैंप। ये कैंप 1947 में बंटवारे के बाद बिहार और यूपी से पूर्वी पाकिस्तान और 1971 के बाद से बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमानों का घर है। लेकिन ये लोग दशकों से बांग्लादेश में रह रहे हैं, फिर भी इन्हें अब भी वहाँ बिहारी और अटके हुए पाकिस्तानी जैसे नामों से पुकारा जाता है। इन लोगों की परेशानी और तकलीफें जानने की कोशिश की BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने।
BBC की इस खास पेशकश में मैं नितिन श्रीवास्तव आप लोगों के साथ हूँ बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक जगह से, और इस जगह को जिनीवा कैंप के नाम से जाना जाता है। मेरे चारों तरफ सैकड़ों हजारों की तादाद में छोटे छोटे पहले एक कमरे के उसके ऊपर दूसरा तीसरा चौथा कमरे बनते चले गए। उस तरह के बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं कहे जाने वाले मकान हैं और हम एक इनमें इसी तरह के किसी मकान की एक छत पर हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं। जिनीवा कैंप की खास बात यह है कि ये 1971 के बाद बना है, यानी बांग्लादेश जब से बना है, बांग्लादेश का जब से फॉर्मेशन हुआ है उसके बाद से ये कैंप भी आया है। और ये तमाम लोग जो हैं ये इनको यहाँ पर स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी कहा जाता है, यानी अटके हुए पाकिस्तानी,
अटके बड़ा पाकिस्तानी
इस नाम से यहाँ पर इनको बुलाया जाता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड देना ज़रूरी है, आप ही दीजिए बैकग्राउंड कि ये कैंप कब से बना, आप के पुरखे कहाँ के थे और क्या हिस्ट्री है इस कैंप की।
ये 1947 में जब हिंदू मुस्लिम में राइट हुआ था इंडिया में, तब वहाँ से माइग्रेट करके हम लोग का ग्रैंडफादर लोग जो है ये ईस्ट पाकिस्तान में चलाए थे।
आपके ग्रैंडफादर कहाँ के थे?
ये बिहार से थे।
बिहार से थे,
हाँ जी, बिहार से। और हम लोग जो अभी यहाँ पे हैं कैंप में जो है वो बेसिकली उड़ीसा, आसाम, बिहार, कलकत्ता, वहाँ से सब माइग्रेट करके यहाँ आए थे। उसके बाद जो है बहुत का अपना मकान हुआ करता था 1971 वार का आगे। उसके बाद जब वार हुआ, वार का बाद बहुत हम लोग का जो है अपना मकान जो है दखल में चल गया। उसके बाद 1972 में जो है सब कैंप इस्टेब्लिश हुआ। इस ढाका में 6 कैंप है और मीरपुर में जो है 39 कैंप।
मुझे बताया गया है कि यहाँ करीब 45,000 के आसपास लोग रहते हैं और पूरे बांग्लादेश में मुझे ये बताया गया है कि जो तमाम इस तरह के कैंप्स हैं जहाँ पर स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी या अटके हुए पाकिस्तानी आपने बताया जहाँ पर, उसमें करीब 4,00,000 लोग रहते हैं, क्या ये सही है?
जी जी, इससे ऊपर है,
4,00,000 से ज्यादा ऊपर है जो आप लोगों को स्टैंडर्ड अटके हुए पाकिस्तानी कहा जाता है
जी।
तो क्या पाकिस्तान आप नहीं जा सके या क्या वजह क्या है?
जाना बंद हो गया 74 में, तो बंद हो गया।
लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने ये कहा है बीच में कि उन्होंने करीब 1,50,000 के आसपास लोगों को वहाँ पर सिटीजनशिप दी।
जी हाँ, वहाँ दी, लेकिन
यहाँ से जो लोग गए,
हाँ यहाँ से जो लोग गए उन लोगों को मिला, वो लोग ये थे, वीजा भी बंद हो गया हम लोगों का, जा भी नहीं पाए। ऐसे लुक छिप के भी जाते आते थे हम लोग, वो भी नहीं सके।
ये मेरा नाम मोहम्मद राजू है।
मोहम्मद राजू, तो ये बताइए कि यहाँ पर मसले क्या है आप?
हम लोग का जो मेन जो प्रॉब्लम है वो है जुबानी मसला है ना। देखिए हम लोग इंडिया से हो क्या है, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से राइट्स हुआ और हम लोग आए इंडिया से। अगर हम लोग का मातृ जुबान जो है इंडिया से और पाकिस्तान से अगर नहीं मैच होता तो हम लोग विक्टिम का शिकार नहीं होते।
तो पाकिस्तान का आपका ये मानना है आप जुबान के शिकार हैं?
जुबान के शिकार।
आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके पास वो सारे अधिकार, वो सारे राइट्स हैं जो वो दूर पीछे वो जो बड़ी बेहतरीन से इमारत है अब से वो 1.5 करोड़ के आसपास के हैं और हम जहाँ पर खड़े हुए हैं यहाँ पर जो ये घर है ये तकरीबन 2,00,000 में मिल जाते हैं, तो क्या आपके पास वैसे राइट्स, वैसे अधिकार हैं जैसे वहाँ पर वो लोग जो हैं उनके पास हैं?
जी नहीं।
क्यों नहीं है?
नहीं है जो, हम लोग तो बहुत तकलीफ में रहते हैं ना, और हम लोग तो दिन कमाते दिन खाते, तो हम लोग तो वो सतो अधिकार नहीं है और कमाता भी है नहीं।
लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने भी कहा है कि उन्होंने आपके लिए काफी कदम उठाए, उन्होंने आपको जो है आपके वोटर आईडीज बना के दिए, आपके पास वोटिंग का अधिकार।
सिर्फ वोटर आईडी कार्ड तक हम लोग को मिला, और कोई हम लोग को नहीं मिलता है, कुछ अधिकार नहीं मिलता है। हम लोग चाहते जो इंडिया जाए वो भी नहीं सकते, पाकिस्तान जाए, हम लोग का भाई बरदर पाकिस्तान में, वो भी जाने का हम लोग का खेमाता नहीं है। जो पासपोर्ट बनोगी या बनोगी, बिहारी को कोई पासपोर्ट नहीं है, वीजा नहीं है।
बिहारी आपने वर्ड यूज किया अभी, क्या यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है आप लोगों को?
बिहारी बोलता है, अटका पोरा पाकिस्तानी बोलता है, बिहारी बोलता है, काट मौरा बोलता है, मैंने हम लोग को बहुत नोंगड़ा किस्म का भाषा देता है।
नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर आप आम लोगों से बात करिए तो वो कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश के जो बंगाली हैं उन्होंने आपके साथ बहुत तालमेल बैठाने की कोशिश की।
बिल्कुल, इसमें कोई शक, हम लोग का साथ जो है उन लोग से इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट का जो मसला है, गवर्नमेंट हम लोग के लिए किया है, आईडी कार्ड हम लोग को दिया है, हम लोग वोट दे सकते हैं, हम लोग सिर्फ वोट ही दे सकते हैं, हम लोग उस आईडी कार्ड से जो है पासपोर्ट नहीं बना सकते।
क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आप जिनेवा कैंप के वासी
हैं। कैंप
अगर पासपोर्ट बन भी जाता है तो वीजा देने में झमेला करता है।
जो पुराने लोग हैं
जी,
इन कैंपों में रहने वाले, वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान चले जाएं, और जो नई जनरेशन है वो चाहती है कि वो यहाँ रहे, क्या ये सही है?
हाँ, इसमें से कुछ समझिए कि 6 आना आदमी चाहता है चला जाए, 10 आना आदमी चाहता है
नहीं जाए। आप बताइए।
मैं मोहम्मद इमरान
जी,
मैं यूपी बिहार का रहने वाला हूँ
जी।
ये हमारे फादर से, हमारा जन्म यहाँ हुआ, लेकिन हमारे यहाँ जन्म कैंप में हम जब से आए हैं, समझिए कि बचपन से हमारा ताल्लुकात ये बंगाली लोग से है। हम लोग स्कूल में साथ जाते हैं, साथ पढ़ते हैं, लेकिन सब कुछ साथ ठीक है, लेकिन हम कभी भी जॉब के लिए जाते तो हमारा जॉब नहीं होता।
तो मुझे लगता है कि मेन मसला यहाँ पर जुबान का है, मेन मसला यहाँ पर जिनेवा कैंप का है, और जो हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर शामिल थे उन्हीं की तरह के और भी सैकड़ों हजारों लोग हैं यहाँ पर, जिनके ज्यादातर दिक्कतें, ज्यादातर मसले इसी से मिलती जुलती हैं।
बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव आपको ढाका में मिलवा रहे थे ऐसे लोगों से जो गए तो थे यूपी और बिहार से, लेकिन अब उन्हें वहां कहा जाता है अटका हुआ पाकिस्तानी।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9,835, 9,915, 11,995 और 15,510 किलोहर्ट्ज, और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
बीबीसी की हिंदी सेवा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भारत, और आपके साथ मैं हूं अशोक कुमार। और अब कार्यक्रम में समय आ गया है कि हम बात करें अखबारों की। आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों में क्या कुछ छपा है, जानते हैं वात्सल्य राय से, जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए।
जी अशोक जी, राजन जाम त्राहिमाम
जी,
आप समझ गए हैं कि मैं किस खबर का जिक्र कर रहा
हूं। भारी बारिश और गुड़गांव में जिस तरह से, और बड़े शहरों में, कई बड़े शहरों में जो जाम लग रहा है
जी, तो त्राहिमाम करके हेडिंग लगाई है अमर उजाला दिल्ली से प्रकाशित अखबार ने, और दो तस्वीरें उसने लगाई है। एक रात की तस्वीर है जिसमें वाहनों की लंबी कतार आप देख सकते हैं, और दूसरे दिन की तस्वीर है कि किस तरह से कतारें लगी हुई हैं।
सुनते हैं कि घंटों घंटों लोग गाड़ियों में और कारों में फंसे रहे।
कुछ अखबारों ने 19 घंटे का जाम बताया है, कुछ ने 18 और कुछ ने 24 घंटे का ये जाम बताया है कि 24 घंटे तक ये जाम की स्थिति लगातार बनी रही। ज़्यादातर अखबारों ने इसको पहली खबर अपना बनाया है। दैनिक भास्कर की हेडिंग है गुरु जाम,
गुरुग्राम में जो जाम लगा है, गुरुग्राम।
टाइम्स ऑफ इंडिया की भी लीड खबर यही है, अखबार ने बताया कि 20 घंटे का जाम लगा और उसके बाद हरियाणा और दिल्ली की सरकारों के बीच में एक दूसरे के खिलाफ दोषारोपण शुरू हो गया।
मतलब यहाँ भी राजनीति।
जी जी, और उनके स्टेटमेंट भी हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कहा दिल्ली सरकार के असहयोग से परेशान हूं। वहीं दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने कहा कि गुरुग्राम रखने नाम रखने से विकास नहीं होता और जुमलों से जाम नहीं खुलता
जी।
लगातार इस तरह के बयान दूसरी पार्टियों की तरफ से भी आए हैं, और सारे अखबारों ने इस खबर को, कुछ ने इसको बैनर खबर बनाया है
जी।
लीड तो ज्यादातर अखबारों ने बनाया
बैनर
है।
मतलब पूरे अखबार पर फैला के इस खबर को दिया,
8 कॉलम में उसको दिया गया है। इसके साथ एक जिक्र करना जरूरी है कि दिल्ली में तो जाम हुआ बारिश के बाद, बाढ़ से प्रभावित हैं असम और बिहार जैसे राज्य। असम की एक तस्वीर लगाई है इंडियन एक्सप्रेस ने, जो बेहाली के बीच में जिंदगी किस तरह चल रही है उसको बताती है। इस तस्वीर में एक महिला नाव पर सवार है, और वो एक रस्सी पर कपड़े सुखाने की कोशिश कर रही है। तो ये तस्वीर के जरिए बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह मुश्किल के बीच में ज़िंदगी चल रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर का मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा, मोदी सरकार में अभी राज्य मंत्री बनाए गए हैं सामाजिक न्याय और आधिकारिता के रामदास अठावले। उन्होंने कहा है कि गायों की रक्षा जो होनी चाहिए वो इंसानी जान की कीमत पर नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने सरकार से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि गुजरात के ऊना में जो घटना हुई जिसके बाद एक विमर्श शुरू हो गया है, उस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो।
रामदास अठावले खुद दलित समुदाय से संबंधित
जी, बिल्कुल। इसके साथ इंडोनेशिया की जेल में जो भारतीय बंद हैं ड्रग्स मामलों को लेकर गुरदीप सिंह, उनकी मौत की सजा स्थगित होने की खबर को भी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। जनसत्ता ने इसको लीड खबर बनाया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी खबर में बताया कि जालंधर में जो उनके परिजन रहते हैं उन्हें दो खबरें मिली। पहले खबर मिली कि गुरदीप को फांसी दे दी गई है, उसके बाद एक संदेश आया कि उनकी सजा टल गई है। GST पास हो सकता है, द हिंदू ने इसको लीड खबर बनाया है। अगले सप्ताह, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सहमति बन गई है, मायावती के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्द कहने वाले दयाशंकर सिंह कल बक्सर से बिहार के गिरफ्तार हो गए। यहाँ इस गिरफ्तारी में जिक्र करना जरूरी है जनसत्ता के कार्टून का, जिसमें दिखाया गया है कि पुलिसकर्मी दयाशंकर की जीप पकड़कर उनको ले जा रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। तो इसके बाद अब चलते हैं आगे और बात करते हैं खेलों की।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। एंटीगा में खेले गए पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज को एक पारी और 92 रन से हराने के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम आज से जमैका में शुरू होने जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में बुलंद हौसलों के साथ मैदान में उतरेगी। ऐसा माना जा रहा है कि जमैका की पिच तेज और उछाल भरी होगी, लेकिन शिखर धवन और खुद कप्तान विराट कोहली के अलावा ऑलराउंडर आर अश्विन और अमित मिश्रा जैसे पुछल्ले बल्लेबाजों द्वारा पहले टेस्ट मैच में दमदार बल्लेबाजी करने के बाद लगता नहीं है कि वेस्टइंडीज के अनुभवहीन गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर कोई दबाव बना पाएंगे। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने पहले टेस्ट मैच में कुछ अच्छी बल्लेबाजी तो की, लेकिन उनमें धैर्य की कमी नजर आई। तेज गेंदबाज उमेश यादव और मोहम्मद शमी के अलावा स्पिनर आर अश्विन और अमित मिश्रा ने शानदार गेंदबाजी की। आर अश्विन ने तो पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 7 विकेट लेने के अलावा बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में शतक भी जमाया, तो विराट कोहली भी कप्तान की पारी खेलते हुए अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक जमाने में कामयाब रहे। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच जमैका में अभी तक 11 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें से 6 में वेस्टइंडीज जीता है, 2 में भारत जीता, जबकि 3 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे। अब भले ही रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के पक्ष में हो, लेकिन वर्तमान हालात में भारतीय टीम बेहद मजबूत है। वहीं पल्लेकल में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने कल पहले टेस्ट मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 268 रनों का लक्ष्य है, और कल जब चौथे दिन का खेल समाप्त हुआ तब उसका स्कोर 3 विकेट खोकर 83 रन था। स्टंप के समय कप्तान स्टीव स्मिथ 26 और एडम वर्जेस 9 रन बनाकर खेल रहे थे। इससे पहले श्रीलंका की दूसरी पारी 353 रन पर समाप्त हुई। श्रीलंका के लिए कुशल मेंडिस ने 176 रनों की बेहद शानदार पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने 84 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को अभी भी 185 रनों की जरूरत है और उसके 7 विकेट बाकी हैं। उधर रियो ओलंपिक के शुरू होने से पहले स्पेन का दौरा कर रही भारतीय हॉकी टीम को दूसरे अभ्यास मैच में भी हार का सामना करना पड़ा। स्पेन ने भारत को 3-2 से हराया, जबकि इससे पहले खेले गए पहले अभ्यास मैच में स्पेन ने भारत को 4-1 से हराया था। स्पेन के लिए जोसेफ रोमेयू, पाउ रिबांडा और साल्वाडोर पियरा ने गोल किए, जबकि भारत के लिए मनप्रीत सिंह और रमनदीप सिंह ने 1-1 गोल किया। अब भारतीय हॉकी टीम स्पेन से सीधे रियो रवाना होगी।
खेल जगत की खबरों का ब्यौरा आपके लिए लेकर आए थे आदेश कुमार गुप्त। और इससे पहले कि आपसे विदा लें, सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान ने ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का ऐलान किया है जिन पर उनके अपमान का आरोप है। बीते 2 साल के दौरान ऐसे करीब 2000 मामलों में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा पर न्यायिक कार्य में बाधा पहुंचाने का मुकदमा चलाया जाएगा। सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास में हुए भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ जांच की जा रही है। अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि फ्लोरिडा राज्य में 4 लोग स्थानीय मच्छरों के जरिए जीका वायरस की चपेट में आए हैं। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि फ्लोरिडा अब भी यात्रा के लिए सुरक्षित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफ्रीकी देश बुरुंडी में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बल की तैनाती को मंजूरी दे दी है। यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी ने यूरोप के 50 से ज्यादा बैंकों की स्थिति को लेकर की गई जांच रिपोर्ट प्रकाशित की है। बीबीसी समाचार।
और इसी के साथ नमस्कार भारत अपने समापन पर आ पहुंचा है। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। आपसे मिलेंगे ठीक एक घंटे बाद कार्यक्रम विश्व भारती में। चलो रियो के साथ अशोक कुमार को अभी अनुमति दें। नमस्कार।